किस्सा कहानी बाय निधि बासु पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। ये स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आई हूँ मैं निधि बासु। इस पॉडकास्ट में सुनिए अपनी पसंदीदा नए पुराने लेखकों द्वारा लिखी दिल छूने वाली हिंदी कहानियाँ केवल स्पॉटिफाई पर। फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो जरूर करें। आज सुनिए आचार्य चतुरसेन जी द्वारा लिखी कहानी राजा साहब की पतलून। वाचन है निधि बासु का। ये कहानी स्वतंत्रता पूर्व भारत की है, जब राजाओं के राज्य और रियासतें हुआ करते थे। वो पतलून उन्होंने खास तौर पर इसलिए तैयार कराई कि जब वे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शरीक होने लंदन जाएं, तो कॉन्फ्रेंस के खास इजलास में उसी पतलून को पहनकर देश देश के राजनीति विशारदों के बीच बैठे और पतलून से उनकी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न कर दें। जब से उन्हें सम्राट जॉर्ज का सादर निमंत्रण उक्त कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए मिला, तब से ही वे इस उधेड़ बुन में रहे कि इस खास अवसर पर वे कोई ऐसी अनोखी चीज साथ ले जाएं जो बेजोड़ हो और जिसकी विलायत में धूम मच जाए। खूब सोच समझ कर उन्होंने ये पतलून तैयार कराने का इरादा दृढ़ किया। उन्होंने ये तय कर लिया कि वे ऐसी बेजोड़ पतलून पहने जैसी संसार में आज तक किसी ने ना पहनी हो। इस निश्चय में उनकी युक्ति यह थी कि जब गांधी जी सिर्फ एक धोती ही पहनकर उक्त कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, तो क्यों ना उस धोती का जवाब इस पतलून से दिया जाए। इससे भारतीय संस्कृति का भी सवाल हल होता था। भारत के शिरोमणि दो ही जाति के पुरुष हैं, एक संत और दूसरे राजा। महात्मा संत हैं, वे धोती पहनकर जाएंगे, तो हम राजा हैं, हम पतलून पहनेंगे। जैसे उस राज्यसभा में गांधी जी की धोती अद्वितीय होगी, वैसी ही हमारी पतलून। अब सवाल ये रह गया कि धोती और पतलून में इन दोनों में सबसे अधिक चर्चा का विषय कौन हो, श्रेष्ठता किसे मिले। बस राजा साहब ने तय किया कि हम जो पतलून पहनेंगे वही अद्वितीय रहेगी और लंदन की उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उस पतलून की ही सर्वोपरि चर्चा रहेगी। जैसे कि राजा लोगों के खून का खास असर होता है, राजा साहब पक्के सनकी थे। उम्र 50 को पार कर गई थी, मगर खूब तगड़े दिखाऊ और ठाठ के आदमी थे। पीढ़ियों के संचित धन रत्न संपदा थी, बड़े बड़े बेजोड़ हीरे मोती माणिक खजाने में भरे पड़े थे। पोलो, ब्रिज और जुआ खेलने में और शराब पीने में एक नंबर थे। धूमधाम की अंग्रेजी बोल लेते थे। संस्कृत के बहुत से श्लोक कंठ थे, उनसे पंडितों पर धाक जमाया करते थे। जिद्दी परले सिरे के थे। रानियां, लौंडियां, पासवाने दर्जनों थी, पर संतान के नाम पर चूहिया भी ना थी। खैर, अब पतलून की बात सुनिए। बनारस के खास कारीगरों को ऑर्डर देकर उन्होंने सोने के ठोस तारों और चीन के महीन रेशम का कपड़ा पतलून के लिए तैयार कराया। दिन के प्रकाश में वो कपड़ा सूर्य की भांति चमकता था। उस कपड़े की बंबई के व्हाइट वे लैडलॉ की अंग्रेजी फर्म से पतलून सिलवाई। पतलून सीने के लिए खास तौर से एक स्पेशलिस्ट कारीगर फ्रांस से बुलवाया गया। उस पर दिल्ली के 12 चतुर कारीगरों को रियासत में बुलवाकर ही मोती जवाहरात तकवाए गए। इन कारीगरों ने 50 संगीनधारी पहरेदारों के पहरे में 2 महीने तक परिश्रम करके ये रत्न कारबोची और सलमे के सहारे से पतलून मिटाके। कुल जमा पतलून पर 1.5 करोड़ रुपए की लागत बैठी। पतलून जब तैयार हो गई तो वो राजा साहब के खास गाह में एक शीशे के केस में रखी गई। उसे राजा साहब देखते और मूछों पर ताव देते थे। वे बहुत खुश थे और अब उन्हें विश्वास हो गया था कि गांधी जी की धोती हरगिज हरगिज इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये पतलून पतलूनों के इतिहास में अद्वितीय है। आखिर यात्रा का समय निकट आया। राजा साहब की यात्रा के लिए एक समूचे जहाज की व्यवस्था की गई। पतलून की चोरी ना हो जाए, इस अंदेशे से स्कॉटलैंड यार्ड से 8 मुस्तैद अफसर बुलाकर तैनात कर दिए गए। अमेरिका की एक प्रसिद्ध महिला डिटेक्टिव को पतलून का चार्ज दिया गया। बादशाह जॉर्ज को खास तौर पर लिखकर राजा साहब ने एक एटिकेट मिनिस्टर तलब किया। बादशाह ने अपने किसी अर्ल को इस काम पर तैनात करके भेज दिया। शाही अदब और वेस्टर्न एटिकेट सिखाना तथा राजा साहब एटिकेट के जरा भी इधर उधर कोई काम न कर सकें, इसकी निगरानी उसका काम था। ज्यों ही जहाज बंबई से रवाना हुआ और लंदन का कार्यक्रम बनने लगा, पतलून की चर्चा चली। परंतु पतलून को अच्छी तरह देखभाल कर एटिकेट मिनिस्टर ने कहा, यही पतलून आप लंदन में नहीं पहन सकते।
क्यों नहीं पहन सकता?
एटिकेट के खिलाफ है। लेकिन गांधी जी कैसे धोती पहन सकते हैं? वे पहन सकते हैं। वो एटिकेट के खिलाफ क्यों नहीं है? उनके साथ ब्रिटिश सरकार की कोई ट्रीटी नहीं है। वे ब्रिटिश सब्जेक्ट नहीं है, वे महात्मा है, वे बादशाह के प्रतिष्ठित मेहमान है।
मैं भी प्रतिष्ठित मेहमान हूं,
पर आप बादशाह के अधीन राजा हैं। तो इससे क्या, इंग्लैंड से हमने कोई ऐसी ट्रीटी नहीं की है कि हम अपनी मनचाही पतलून न पहन सकें? न सही, पर ये एटिकेट के खिलाफ है। वहां आपको जिस जिस अवसर पर जैसी जैसी पोशाक पहननी चाहिए, उनकी तैयारी का ऑर्डर मैंने लंदन की एक प्रसिद्ध फर्म को दे दिया है। वहां पहुंचते ही वे पोशाकें मिल जाएंगी। लेकिन मैं ये पतलून पहनकर खास इजलास में जाना चाहता हूं। ऐसा नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता?
कहा तो एटिकेट के खिलाफ है।
फिर भी यदि मैं पहनूं,
तो लंदन के लोग आपको पागल समझेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे।
ये तो सरासर बदतमीजी है।
बदतमीजी नहीं है, एटिकेट है। इंग्लैंड सभ्य देश है, वहां सब एक सी पोशाक पहनते हैं।
तो लोग कैसे जानेंगे कि मैं वहां गया?
आप तो आप खूब जोरदार स्पीच दीजिए।
लेकिन पतलून,
ये पतलून नहीं पहन सकते।
राजा साहब उसी दिन नाराज हो गए। उनका लंदन जाने का सारा उत्साह ही ठंडा पड़ गया, सारा मजा ही किरकिरा हो गया। उन्होंने ठंडी सांस लेकर कहा,
फिर तो मेरा लंदन जाना ही बेकार है।
बेकार क्यों है? मैं ये पतलून तो वहां नहीं पहन सकता।
लेकिन आप एक काम कर सकते हैं,
चतुर एटिकेट मिनिस्टर ने कहा। वो क्या?
लंदन से वापसी में आप अपनी रियासत में एक ग्रैंड जलसा कीजिए, उसमें ये पतलून पहन सकते हैं।
उसमें एटिकेट के खिलाफ नहीं होगा?
जी नहीं, हिंदुस्तान में एटिकेट का कोई सवाल ही नहीं है।
और फिर ये मेरी रियासत है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं।
बेशक।
राजा साहब खुश हुए। उन्होंने कहा, यही सही, लंदन में ना सही, वापसी में जबरदस्त दरबार करूंगा जिसमें ये पतलून पहनूंगा। सो लंदन से लौटते ही राजा साहब ने एक भारी दरबार का आयोजन किया। ये आयोजन राजा साहब की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से अवाई के सिलसिले में था। अनेक राजा, महाराज, अंग्रेज अफसर निमंत्रित किए गए। बनारस के भांड, दिल्ली के नकाल और वेश्या बुलाई गईं। नाच तमाशों की धूमधाम मच गई। शिकारों के बड़े बड़े प्रोग्राम बने। दावतों की खास तैयारी हुई। देश देश के कलावंतों को बुलाया गया। जब दरबार का सिर्फ एक दिन रह गया तो राजा साहब ने एक बार पतलून का रिहर्सल किया, यानी पतलून को एक बार पहन कर देखा, परंतु पतलून फिट नहीं हुआ, उसमें एक सिलवट पड़ती थी। राजा साहब की त्योरियों में बल पड़ गए। उन्होंने रियासत के सब दर्जियों को और उनके उस्तादों को तलब किया और कहा, इस पतलून का ये नुक्स दूर करो। ये क्या बात है कि जब हम पतलून पहनते हैं तो इसमें एक सिलवट पड़ती है। दर्जियों और खलीफाओं ने देखभाल कर सलाह की और सबने एक मत होकर कहा, अन्नदाता, ये हमारे बूते का काम नहीं है। ये नुक्स तो वही कारीगर दूर कर सकता है जिसने इसे सिया है। हम तो सरकार इसे छूने का भी साहस नहीं कर सकते। सारा बना बनाया काम चौपट हो गया। राजा साहब बौखला उठे। अब हम कल भरे दरबार में ये पतलून पहनेंगे और इसमें सिलवट पड़ेगी तो लोग क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इस नुक्स को दूर करना होगा। उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को तलब किया और उन्हें हुक्म दिया, दरबार कल नहीं हो सकता, उसे अनिश्चित काल के लिए मुलतवी कर दीजिए और बंबई को तार दे दीजिए कि वो कारीगर जिसने पतलून सी है हवाई जहाज से तुरंत यहाँ आए। दरबार मुलतवी हो गया, परंतु नाच, रंग, खाना पीना, मुजरा, शिकार चलता रहा। कारीगर हाजिर हो गया, परंतु राजा साहब ने जो शेर के शिकार का प्रोग्राम बनाया तो 12 दिन तक उससे मिलने की फुर्सत ही नहीं मिली। 12 दिन बाद उन्हें एकाएक याद आया। उन्होंने सेक्रेटरी से पूछा, वो कारीगर आया? जी सरकार, हाजिर है। तो सवारी राजधानी को चले, शिकार के सब प्रोग्राम बर्खास्त। सवारी महलों में लौटी, कारीगर रूबरू हाजिर हुआ। राजा साहब ने पतलून पहनकर दिखलाई, उस सिलवट की ओर उन्होंने संकेत किया। कारीगर ने क्षण भर देखा, मुस्कुराया और जेब से कैंची निकालकर एक एक बटन काट लिया और उसे जौ भर खिसका कर टांग दिया। पतलून फिट बैठ गई, नुक्स दूर हो गया। राजा साहब खुशी से बाग बाग हो गए। कारीगर ने बिल पेश किया। कुल खर्चा मिलाकर 22,000 का बिल था। राजा साहब ने उस पर एक सरसरी नजर डालकर हुक्म दिया, बिल का डबल पेमेंट कर दिया जाए और कारीगर को दरबार के बाद सिरोपाव देकर विदा किया जाए। अंततः धूमधाम से दरबार हुआ। राजा साहब ने पतलून पहनी, उनकी आरजू पूरी हुई। उस दरबार में प्रत्येक के मुंह पर केवल पतलून का नाम था। राजा साहब की मूछों का प्रत्येक बाल मुस्कुरा रहा था। आप सुन रहे थे आचार्य चतुरसेन जी द्वारा लिखी कहानी राजा साहब की पतलून। वाचन था निधि बासु का। आज की कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके कमेंट्स या फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। तो सुनते रहिए किस्सा कहानी बाय निधि बासु केवल स्पॉटिफाई पर, और फॉलो बटन दबा के मेरा पॉडकास्ट फॉलो करना ना भूलें।